وَكَذَلِكَ أَثَرْنَا عَلَيْهِمْ، اور اسی طرح ہم نے مطلع کر دیا ان کو ان پر. کیسے کر دیا؟ کہتے ہیں کہ سابق کہف کا ایک ساتھی کھانا لینے کے لیے گیا تو اپنے لباس، حال، حلیے، کرنسی وغیرہ سے پہچان لیا گیا کہ یہ تو آج کے دور کا انسان نہیں ہے، موجودہ دور کا نہیں ہے. پھر جب تفتیش کی گئی سارا راز کھل گیا کہ یہ تو 300 سال سے پہلے کا کوئی قصہ ہے، لہٰذا لوگوں میں تو بات پھیل گئی. اب اس سارے عرصے کے دوران جب خبر کھولی، پتہ چلا کہ وہ بادشاہ جس کے ڈر سے ان لوگوں نے جان بچائی تھی یا اپنا ایمان بچایا تھا، یہ 7 آدمی گم چکے تھے اور حکومت نے ہر ممکن کوشش کی تھی ان کو ڈھونڈوانے کی. جب نہیں ہوئی تو گورنمنٹ نے ایک کتبے کے اوپر ان کا سارا قصہ لکھ کر شاہی خزانے میں محفوظ کر دیا کہ یہ کچھ 7 نوجوان تھے اور یہ چلے گئے، اور کبھی ملیں تو ان کی یہ ڈیٹیلز ہے. جب ان کی مخبری ہوئی، اس جا کے ڈیٹیلز کو کھول کے دیکھا تو ساری بات کھل کے سامنے آ گئی. لیکن بات ہو گئی، کیا ہوئی اب نوٹ کر. وہ بادشاہ تو مر کھپ گیا، اس کے دوران دین بھی ٹھیک ہو گیا. ان لوگوں نے جس مقصد کے لیے قربانی دی تھی، اللہ نے وہ کام ان کے دنیا سے جانے کے بعد یا روح پوش ہونے کے بعد کر دیا. یہاں تھوڑا سا رکیے. محراب آج دین کے لیے تھوڑی سی کوشش کر رہے ہیں لیکن ہمیں کوئی نتائج نہیں دکھتے، تو ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم ناکام، کچھ دیکھا ہی نہیں، کچھ فائدہ ہی نہیں. تو جواب اس کا پھر وہی ہے، آپ اگر بیج ڈالنے والوں میں سے ہیں، فصل کاٹنے والوں میں آپ نہیں بھی ہیں نا، تو ڈونٹ وری، آپ کا اجر ضائع نہیں ہوگا. آپ نیکیوں اور خیر شروع کر جائیں، آپ کے بعد لوگ اس کی فصل کاٹیں گے. جیسے مصعب بن عمیر شروع میں چلے گئے، اور ایسے ہی وہ صحابہ جنہوں نے شروع میں قربانیاں دی. اب کیا ہوا؟ اللہ نے ان کو دوبارہ مرنے کے بعد زندہ کیوں کیا؟ لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، تاکہ وہ جان لیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے. پہلا، اب میں آپ سے سننا چاہتی ہوں یہاں وعد اللہ ہی سے کیا مراد ہے. جی بتائیے. غار میں رکھنا، پھر اتنے سال کے بعد جگانا، اس سے اللہ کا کون سا وعدہ سمجھ آ رہا ہے؟ چلے میں اگلا بتاتی ہوں. وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا، ایک ان کے اٹھوانے پہ یہ بات تو انڈرسٹوڈ تھی کہ مرنے کے بعد زندہ کیے جاؤ گے. دوسرا وعدہ کون سا ہے؟ کہ اللہ کے نام پر اس قائم ہوں، جب وہ کھڑے ہوئے اللہ نے ان کو رسوا نہیں کیا. یہ اللہ کے وعدے تھے. اور دنیا سے جانے کے بعد دوبارہ اٹھانے کی بات بھی ہو گئی. خیر، اس یتنازعون بینہم امرہم، جب وہ لوگ آپس میں جھگڑ رہے تھے ان کے معاملے میں، ان کے بعد کون تھے؟ کہتے ہیں کہ اللہ نے پھر اصحاب کہف کو اس کے بعد ان کی طبعی موت دے دی. جیسے عمر پوری کر کے لوگ مرتے ہیں، اسی غار میں یعنی ان کو اللہ نے حقیقی موت دے دی. اب جب ان کی موت آئی، اب یہاں بڑی اہم بات، اسپیشلی ہم انڈو پاک کلچر کے لوگوں کے لیے، ان لوگوں نے کس مقصد کے لیے گھر چھوڑے تھے؟ غار میں آئے تھے ایک اللہ کے نام پہ، توحید کے لیے، ایسے ہی ہے نا. لیکن اب یہ جب مرے تو لوگوں نے ان کی شخصیت کو کیا بنا دیا؟ دیکھیے گا، فقال ابن علیہم بنیانا، چنانچہ کچھ لوگوں نے کہا کہ تعمیر کر تو ان پر ایک عمارت یادگار کے طور پر. ربہم اعلم بہم، ان کا رب ان سے خوب واقف ہے. یعنی کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ تو بڑے پہنچے ہوئے بزرگ تھے، تو کیا کرو، ان کی اس جگہ کو ایک نشانی بنا کر ان کے اوپر ایک عمارت قائم کر دو. دوسرے لوگ تھے، قال الذین غلبوا علی امرہم، مگر وہ لوگ جو غالب آئے تھے اپنی رائے کے اعتبار سے، کیا کہا؟ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا، ہم تو ان کی غار پر ایک مسجد بنائیں گے. یہ دو آیتیں ہیں بہت اہم، دو جملے ہیں بیسیکلی. دیکھیے، توحید کے لیے گھر سے نکلے، قربانیاں دیں، شرک سے بچے، لوگوں نے آج ان کی شخصیت کو شرک کا ذریعہ بنا لیا. بات واضح؟ بالکل ایسی جیسے انڈیا پاکستان میں بہت سارے بزرگان دین کے ساتھ آج لوگوں نے کیا. نام لے لیجئے، علی حجویری صاحب، عبد القادر جیلانی صاحب، یہ تاریخ کی بہت بڑی بڑی شخصیات ہیں. ساری زندگی لوگوں کو توحید سکھاتے رہے، توحید کے تقاضے، شرک اور بدعت اور کفر کا فرق بتاتے رہے. طبعی زندگی بسر کرنے کے بعد دنیا سے چلے گئے. لوگوں نے کیا کیا؟ ان کی قبروں پہ عمارتیں بنا کے مزار بنا دیے، درگاہیں بنا دی. قیامت کے دن یہ نیک بزرگ اپنے تمام ان لوگوں کو جو ان سے کچھ مانگنے اور امیدیں لگا کر ان کی قبروں پہ چڑھاوے چڑھانے और इनकी कब्रों पे जाके सलामियत देते हैं, वो कयामत के दिन मुकदमे दायर करेंगे कि हमने तो तुम्हें ये नहीं कहा था कि हमें सजदे करो। देखिए, शिर्क की बुनियाद शख्सियत परस्ती है, इससे इंसान को बचने की ज़रूरत है। और नबी सल्लम ने अपनी ज़िंदगी में ये हुक्म दे दिया था कि देखो, मेरे बाद मेरी कब्र को मस्जिद ना बनाना, मेरी कब्र को कोई मेला ना बनाना। नबी सल्लम ने यहूद व नसारा के लिए सख्त लफ्ज़ इस्तेमाल किए, किस बात पे? कि जब इनका कोई नबी मरता था तो ये उसकी कब्र बनाकर उसके ऊपर मज़ार बनाते थे। इस्लाम का मिजाज क्या है? नंबर एक, कब्र कब्रिस्तान में होनी चाहिए। पहली बात, जॉइंट कब्रिस्तानों में एक कब्र किसी नेक बुजुर्ग की भी हो सकती है, आलिम दीन की भी हो सकती है, वक्त के बादशाह की भी हो सकती है, ठीक है, और किसी गुनाहगार की भी हो सकती है। कब्र के अंदर का क्या मामला है, ये अल्लाह को पता है। दूसरी बात नोट कीजिए कि अकेली कब्र नहीं बन सकती, नहीं बननी चाहिए। तीसरी बात है, अगर किसी जगह अकेली कब्र बन भी गई है तो उसके ऊपर मस्जिद नहीं बन सकती। अब सवाल होगा कि मस्जिद नबी के साथ और नबी सल्लम की कब्र है, आपका रोज़ा मुबारक है, तो पहली बात देखिए, कब्र पे मस्जिद नहीं बनी, मस्जिद पहले से थी। दूसरी बात है कि नबी सल्लम का जो रोज़ा है ना, ये वो अपनी ज़िंदगी में आपका घर था, हज़रत आयशा का हुजरा था, और नबियों के लिए अल्लाह की ये सुन्नत है कि वो जहाँ फौत होते हैं वहीं दफन किए जाते हैं। लेकिन आज भी सऊदी हुकूमत इस बात पे बहुत ज़्यादा केयरफुल है कि नबी सल्लम के रोज़े पे जाकर लोग बिदात ना करें, और आपको अल्लाह ले जाए अगर नहीं गए आप तो, उम्रा नहीं हज पे ही अल्लाह आपको ले जाए, हम सबको साथ ही ले जाए इंशाल्लाह ताला। आप देखेंगे कि जितना शिर्क और बिदत हमारे कल्चर के लोग जाके रोज़े पे करना चाहते हैं, ऐसे वो बेचारे हर ग्रुप को जिसको अंदर भेजते हैं ना, पहले बैठ के बड़े बड़े भोंपूस लगा कर ना गाइड कर रहे होते हैं, इधर नहीं इधर मांग, सामने किबला रोज़ा इधर है, हमारी औरतें वहाँ जाकर सीधे हाथ से ऐसे दुआ मांगने के बजाय टेढ़ा मुँह करके ना नबी की तरह मांगती हैं, और वो जो सऊदी शुरते अंदर यानी औरतें होती हैं ना वॉलेंटियर, उनके हाथों को ऐसे ऐसे करते हैं कि नहीं इधर नहीं इधर मुँह करके मांगो। नबी के लिए दुआ मांगनी है तो वो तो अल्लाह से मांगेंगे, तो नबी से कुछ मांगना है तो आपको इधर मुँह करना होगा। शिर्क की जड़ काट दी सिर्फ इस एक जुमले ने। आप मुझे बताइए कि जो लोग अपने मज़हब में से कब्र परस्ती और मज़ार परस्ती की बुनियादें बनाते हैं, वो इस आयत की क्या तावील करेंगे? अल्लाह नोज़ दी बेस्ट। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत के लिए ये बात इसीलिए मौजूद है, और मैं दिल दुखाने के लिए नहीं कह रही, हकीकत के लिए कह रही हूँ। हमारे मुल्क में कुछ मशहूर लोगों की यादगारें, मसलन मज़ार कायद, अलामा इकबाल की कब्र जो कि गालिबन बादशाही मस्जिद के साथ है, शरण इस तरह नहीं हो सकती। फिर आप देखते हैं 23 मार्च, 14 अगस्त को फूलों की सलामी, कोई मुल्क का बादशाह था, इस्लाम का ये प्रोटोकॉल ही नहीं है। अब अगर हमने वाकई इस्लाम को इस्लाम के लिए लिया था तो ये सारी चीज़ें जो थी हमारे सामने आनी चाहिए, और अपने आप को इन चीज़ों से बचाएं। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हो कहते हैं कि ए अल्लाह, मेरी कब्र को बुत ना बनाना। अल्लाह ने उन लोगों पर लानत की कि जिन्होंने अपने अम्बिया की कब्रों को इबादत का बना दिया। ये मुस्नद अहमद की रिवायत है। उम्महातुल मोमिनीन जो नबी की बीवियाँ थीं, कहती हैं अल्लाह के नबी की वफ़ात के बाद सहाबा आपस में मशवरा करने लग गए कि हम अपने प्यारे रसूल की कब्र कैसे बनाएं, क्या हम कब्र को इबादत का बना लें? तो अबू बकर फरमाने लगे कि मैंने खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है कि यहूद व नसारा अल्लाह की रहमत से दूर हों कि उन्होंने अपने अम्बिया की कब्रों पर मस्जिदें बना दी। फिर इसी तरह कैस बिन साद कहते हैं, हीरा, हीरा यमन का एक शहर है, कहते हैं वहाँ मैं गया तो वहाँ के लोग अपने हाकिम के सामने सजदा करते थे, मैंने सोचा कि इनके हुक्मरानों की शान नबी से ज़्यादा तो नहीं है। वापस आए, अल्लाह के नबी को देखा तो कहा, अल्लाह के नबी, हमने तो उनको अपने हुक्मरानों को सजदा करते देखा है, क्यों ना हम आपको भी सजदा करें। सोचिए, अब ये सवाल नबी के सामने रख के पेश किया तो आपने फरमाया, अच्छा बताओ अगर मेरी कब्र पर तुम्हारा गुजर हो तो क्या तुम मेरी कब्र पर सजदा करोगे? उन्होंने कहा नहीं। तो आपने फरमाया फिर अब भी मुझे सजदा ना करो। ये अबू दाऊद की रिवायत है, और इसी पे वो रिवायत है जो मर्दों को बड़ी पसंद है। एक रिवायत में आता है कि हबशा से जब लोग आए थे तो उन्होंने इस तरह का सवाल पूछा था, तो आपने कहा कि अगर किसी को सजदा जायज़ होता तो बीवी को हुक्म दिया जाता कि शोहर को सजदा करे। ये हदीस है, इसमें झूठ नहीं, लेकिन नहीं है, हुक्म नहीं है, अगर होता तो, इफ इट विल, तो नहीं है। तो लोगों ने कहा शोहर मजाजी खुदा, आउज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। फिर मजाजी बीवी भी होनी चाहिए और फलां फलां भी हो जाए, ये गलत चीज़ें हैं। तो बहरहाल किसी के साथ ऐसा मामला नहीं करना चाहिए। अबू सईद खुदरी की रिवायत, अल्लाह के नबी ने फरमाया सारी ज़मीन मस्जिद है मगर कब्रिस्तान और हमाम, यानी दो जगह पे हम नमाज नहीं पढ़ सकते। अब यहाँ से अगर हम जाएँ घर की तरफ तो रास्ते में कब्रिस्तान है, हम कब्रिस्तान की हद के अंदर नमाज नहीं पढ़ सकते। हालांकि नमाज है, आप उसे बाहर निकल के पढ़ लें, लेकिन क्यों, शक क्या होगा कि आप साहिबे कब्र को सजदा कर रहे हैं। ठीक है, ये तिर्मिज़ी की रिवायत थी। तो बहरहाल जो लोग कब्रों पर जाते आते हैं उनके लिए इन आयतों में बहुत ही इसलाह की बात है। अब क्या हुआ, सयकूलून, एक मामला ख़त्म, कब्रों में सजदा नहीं कर सकते, नहीं बना सकते। आप कहेंगे आप क्या करें, देखिए नबी सल्लम ने मक्का में 13 साल कुछ नहीं किया, 8 साल तक मदीना में रहने के बावजूद कोई रिएक्शन शो नहीं किया। जिस दिन मक्का फतह हुआ, अल्लाह के नबी ने जो डिफरेंट काम किया उसमें एक काम क्या था, हज़रत अली और हज़रत मिक़दाद थे और गालिबन 2 या 3 साहब, यानी जिसमें हज़रत अली प्रोमिनेंट थे, जो आपके दामाद भी थे, आपके चचाजद भाई भी थे, उनको भेजा और कहा कि अली मक्का और उसके इर्द गिर्द, मज़ाफात कहते हैं इसको, कोई ऊंची कब्र ना रखो, कब्रों को ज़मीन के लेवल पे करो, और कोई बुत है तो उसको तोड़ दो, कोई तस्वीर है तो उसको मिटा दो। तो हमें भी ये 1947 में काम कर देना था, अगर किया होता तो आज हमारा मुल्क भी वाकई पाकिस्तान होता। आज हमारे मुल्कों में जो तकलीफ़ें और परेशानियाँ आती हैं उसकी अल्लाह को पता है वजह क्या है, करप्शन अपनी जगह, बेहयाई अपनी जगह, झूठ फ्रॉड अपनी जगह, लेकिन जिस पाकिस्तान की ज़मीन पे गली गली नुक्कर नुक्कर पे कब्र हो, दरगाह हो और बुज़ुर्गों को लोग पूजें, फिर उनका क्या हाल होगा। याद रखिए शिर्क परस्ती को रोकने की ज़रूरत है। चलिए अब एक और रात आती बहस, कितने थे भाई, हेड काउंट, इसका नाम लिख लीजिए हेड काउंट, गिनती। सयकूलूना सलासतुराबियुहुम कल्बुहुम, अब ये लोग कहेंगे कि वो 3 थे और चौथा उनका कुत्ता था। वयकूलूना खमसतुन सादिसुहुम कल्बुहुम, दूसरा बंदा कहेगा नहीं नहीं 5 थे और छठा इनका कुत्ता था। रजमम बिलगैब, बेतुक्के तीर चला रहे हैं, रजम करना क्या होता है, पत्थर मारना, और बिलगैब क्या, जैसे मैं आँख बंद करके इधर इधर करूँ, पता ही नहीं वो किधर लगेगा। उर्दू में हम कहते हैं ना बेतुकी हाँकना, तो ये मुहावरा है कि बग़ैर वजह के देखे करें। वयकूलूना सबतुन, और वो कहेंगे वो 7 थे, बस सा मिनहुम कल्बुहुम, और चौथा उनका कुत्ता था। क़ुल रब्बी आलमु बिद्दतिहिम, कह दीजिए आपका रब जानता है उनकी गिनती को। मा यालमुहुम इल्ला क़लील, कोई नहीं जानता मगर थोड़े से लोग। अब ये देखिए इस वाक़े पे कमेंट्स, वाक़या पूरा हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, कमेंट्स क्या हैं, उनकी तादाद को इतना बड़ा इशू है। देखिए ना 3 थे, 4 थे, 5 थे, ये थे, वो थे, इन सारों में गौर करिए ना, तो मुफसरीन कहते हैं कि वो 7 थे। क्यों भला, रजमम बिल गैब से पहले 3 और 4 की बात हो गई, लेकिन रजमम बिल गैब के बाद आखिरी जुमला क्या, वयकूलूना सबतुम व सामीनुम कल्बुम, तो गालिब इमकान है कि वो 7 थे और 7 स्लीपर्स के नाम पे मौजूद थे। अब आप देखिए कि 7 थे और 8वां कुत्ता था, गिनती से कुछ नहीं होता, अल्लाह को पता है वो कितने थे। को रब्बी आलमु बिद्दती मा यालमु इल्ला कलील, क्या पता चला, ऐसी बहसों में नहीं पढ़ना चाहिए। बस आप देखिए आप यहाँ क्यों आए, तफसीर सुनने, मैं भी पढ़ाने आई ना, मैं क्या करूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 10 मैं आपको गिनने लग जाऊँ तो मैं पढ़ाऊँगी कब। और आप पहली दफ़ा स्कूल में आए तो आप कहते हैं कि अच्छा पहली दफ़ा, अच्छा काफ़ी बड़ा स्कूल है, खिड़कियाँ कितनी हैं इनकी, 1 2 3 4 5, पहले इधर की गिने फिर उधर की गिने, आपको फ़ायदा होगा यहाँ के बैठने का। आज हमारे कल्चर में हेड काउंट बहुत अहम हो गया, किसी दर्स की बात करें, मजहबी प्रोग्रामों की बात कर लें, कितने लोग थे भाई, कितने थे, सारे अबू जहल जैसे थे तो क्या फ़ायदा हुआ, और कहीं कोई के कितने थे, बस 7 लोग थे, नाकाम हो गए, फ़ायदा नहीं, क्या पता वो 7 अबू हुरैरा जैसे 7 हो, तो हेड काउंट में नहीं पढ़ना चाहिए। हमारे यहाँ बहुत कहते हैं ना कि कितने, तो वो कहते हैं कि मोमिन गिना नहीं तो ला जाता है, क़यामत के दिन मोमिन का एक एक कदम अपने पलड़े में बहुत भारी होगा। पहले क्या था, कम लबिस तुम, कितना सोए भाई, जितना मर्जी सोए थे इससे क्या फ़र्क पड़ता है, यहाँ क्या क्या, कितने थे, कितना, कितने, ये है वो है, ये सारी चीज़ें। अब इसमें कुछ इल्मी बातें भी हैं जिसको बहुत ज़्यादा डिस्कशन में ना भी ले आएँ तो बात अलग है, क्योंकि वहाँ कम लबिस तुम थे, कितनी देर सोए थे, यहाँ कालू जमा, तो जमा से लगता है कि वो तीन से ज़्यादा थे, और तीन से ज़्यादा ही थे ये इसमें कोई शक की बात नहीं। बहरहाल सारी बात का खुलासा फला तुम्हारी फी है, मत झगड़ा कीजिए इनके मामले में, इल्ला मिरान जाहिरन, सरसरी बहस के सिवा। वला तस्तफ्ती फीहिम मिन्हुम अहदा, और मत किसी से फतवा तलब करें इनके बारे में कभी भी किसी से, यानी किसी के बारे में इनकी कुरेत ना निकालें। क्या पता चला दीन की दावत और इकामत दीन की कोशिशें करने वालों के लिए ये साइड इश्यूज़ बहुत अहम नहीं होते। और यकीन करें मेरे पास एक तफसीर थी, मैं आप यहाँ नहीं है, मेरे पास पहले पक्ष में थी, इतनी मोटी थी और इतना बड़ा रजिस्टर जिसको रजिस्टर कहते थे सूरह कहफ पे थी, मोटी तफसीर थी, अच्छी थी वो भी, इतने पेज बीच में आप गिन के कह सकते हैं 15 से 20 सफ़े सिर्फ असहाब कहफ के कुत्ते की बहस पे थे, किस रंग का था, कैसा था, काला था, पाँव कैसे थे, निकला कैसे, आया कैसे, गया कैसे। मैं आपको इस कोर्स के दौरान सिर्फ एक दिन कुत्ते की डिटेल सारी बताती जाऊँ तो फिर आपका मेरा क्या फ़ायदा। हाँ, मुझे आपको ये ज़रूर बताना चाहिए कि कुत्ता शौकिया पालना ये इस्लाम में पसंदीदा नहीं है। हिफाजत के लिए घर से बाहर हैं, खेतों की हिफाजत के लिए पहले दौर में लोग रखते थे, कोई हर्ज की बात नहीं है। जानवरों के बाड़े के बाहर रख देते हैं कि कोई भेड़िया ना आए, इट्स ओके। पेट समझ के घर में कुत्ते को रखना हर दिन नामे अमाल से एक किरात, किरात आप कह ले बड़ा पहाड़, नेकियों का काम हो जाता है। एक मौके पर जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के नबी से कहा कि मैं आऊँगा आपको मिलने, आप इंतज़ार करते रहे। आए नहीं, हालांकि वो तो जो कह देते थे उस पर काम करते थे। आप इंतज़ार करते करते घर से बाहर आए, जो ही बाहर आए तो जिब्राइल आ गए। कहा क्या आप अंदर आइए? कहा नहीं, आपके घर में गली से कुत्ते का एक पिल्ला चला गया है, और जहाँ कुत्ता और तस्वीर हो उस घर में हम फरिश्ते नहीं आते। तो इस पे हमने एक कोर्स किया था पिछले साल रमज़ान में, याद होगा आपको, आखिरी 3 दिन अल्लाह की रहमत के फरिश्ते कहाँ आते हैं कहाँ नहीं आते, तो उसमें से ये सारी हदीसें आप पढ़ सकते हैं। बच्चों को भी शुरू से इस चीज़ पे मायल रखें। देखिए माहौल और कल्चर को देखकर बाज़ घरों के अंदर बच्चे कह सकते हैं हमें कुत्ता पालना, बिल्ली पाल लीजिए, लेकिन यह है कि कुत्ता नहीं पालना चाहिए। और अगर है, और यहाँ भी देखिए कि कुत्ता बाहर था, ठीक है। अब इन बहसों में पढ़कर अपना और दूसरों का वक्त ज़ाया नहीं करना चाहिए, वो कौन थे कितने थे, लेकिन वो बात याद रखें कि कुत्ते को दलील बनाकर, यहाँ पीछे भी बात की थी कि अच्छे लोगों के साथ एक कुत्ता रहा तो उसका जिक्र कुरान में आ गया, और हज़रत नूह का बेटा नबी का बेटा था लेकिन देखिए बुरी सोहबत ने उसको बाप के मिशन से दूर कर दिया। अब ये सारी बातें जो हुई, किस्सा पूरा हुआ है, अब इसका ततिम्मा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इम्तिहान लेते थे मक्का वाले भी, कोई बात पूछते थे, जैसे यही वाक़या था या कोई और था, तो आप कहते थे ऐसे जिब्राइल आएंगे तो मैं बता दूंगा। ऐसी ही कोई बात थी जब नबी सल्लम से सवालात किए गए तो आपने कहा कि मैं तुम्हें इसका जवाब कल दे दूंगा, और आपने इंशाल्लाह नहीं कहा। नबी सल्लम के पास जिब्राइल अलैहिस्सलाम एक सर्टन टाइम पे आते थे, और आपके गुमान के मुताबिक वो कल आने वाले थे। आपने सोचा कि इन्होंने ये 3 सवाल पूछे हैं तो मैं इसका जवाब खुद ना दूँ, और ये बहुत अच्छी बात होती है कि पूछ लेना चाहिए जवाब देने से पहले। अब अल्लाह का हुक्म हुआ कि आपने इंशाल्लाह नहीं कहा, तो उस पर आयत उतर गई, वला तकूलन अली शईन इन्नी फाइलुन ज़ालिका गदा, और किसी चीज़ के बारे में कभी ये ना कहा करें कि मैं ये काम कल ज़रूर कर दूंगा। बात समझ गए, कल ज़रूर कर दूंगा, बल्कि क्या कहें अगली आयत देखें, इल्ला इंशाअल्लाह, मगर ये कहें कि इंशाअल्लाह, यानी अगर अल्लाह ने चाहा, मुस्तकबिल के बारे में जब कोई बात कहें तो ये कभी ना कि हम ये करेंगे, मैं जा रही हूँ, मैं खा रही हूँ, मैं पका रही हूँ, इंशाअल्लाह के। देखिए ये अल्लाह का मुसलमानों पर एक बहुत बड़ा फ़ज़ल है कि अपनी माशरती ज़िंदगी में छोटे छोटे जुमले सिखा दिए जिसमें अल्लाह की तौहीद, अल्लाह की मोहब्बत भरी पड़ी है। कोई अच्छी चीज़ देखी सुबहान अल्लाह, कोई आपको बहुत नेमत मिली अल्हम्दुलिल्लाह, मुश्किल आसान हुई तो कल अल्हम्दुलिल्लाह, घर में आए तो अस्सलाम वालेकुम, अच्छी चीज़ देखी तो माशाल्लाह, किसी काम का इरादा था तो इंशाल्लाह, तो इंशाल्लाह, माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ये इस्लामिक रिचुअल्स हैं। अफसोस के साथ कहूँ कि आज लोगों ने इसको भी मौलवियों के जुमले बना दिए, मजाक करते हैं, हमें पता है तुम कोर्स कर रही हो, अब इंशाल्लाह इंशाल्लाह, ये क्या हुआ। अच्छा लोग कहते हैं गॉड विल्स, ये भी दुरुस्त नहीं है, याद रखिए ना वो गॉड है और ना विल है उसकी, वमा तशाउन इल्ला इंशाल्लाह। तो इसमें एक सिंपल सा रेफरेंस तो ये है कि इंशाल्लाह कहना चाहिए, और हदीस में आता है कि जब आप इंशाल्लाह कहते हैं तो फिर वो काम नहीं भी कर पाते या वो काम नहीं होता तो आप किस में पकड़नी होती। चलिए ये बात तो हो गई ख़त्म, لیکن اس سے ایک اور بڑی پیاری بات ہے، اگر آپ دیکھیں آیت میں کہ مت کہا کریں کسی چیز کے لیے کہ کل کروں گا، اس کو ہم اپنے کلچر میں کیا کہتے ہیں، آج کا کام کل پر نہ ڈالو، اور ہماری تو عادت ہی ہے پوسٹ پون، چیز کو الگ سے الگ کرتے جانا، یہ ہوگا وہ ہوگا، آج کا کام آج کیجیے۔ پھر اس طرح سے یہاں سے ایک اور بات، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب نہیں بتاتا، اگلی بات نوٹ کیجیے، فرشتہ آپ کی مرضی سے نہیں آتا تھا، چاہے آپ کی کتنی شان تھی جو بھی تھی، لیکن اللہ نے آپ کی تربیت کے لیے پھر جبرائیل کو روک ہی لیا۔ پھر کافی دن کے بعد جب یہ معاملہ کھلا تو پھر جبرائیل علیہ السلام آئے تھے، تو اپنے بچوں کو شروع سے یہ بات بتائیں، ہاں وذکر ربک اذا نسیت، اور اپنے رب کو یاد کر لیا کریں جب آپ بھول جائیں، یعنی اگر آپ انشاءاللہ کہنا شروع میں بھول گئے تھے نا تو بعد میں یاد کر دیں، تو کہہ دیجئے کہ انشاءاللہ یہ کام کریں گے۔ وقل سائیں یہدینی ربی لاقرب من ھذا رشدا، اور کہیے ہو سکتا ہے کہ میرا رب میری رہنمائی کر دے اس سے بہتر بھلائی کی طرف، یعنی جب آپ انشاءاللہ کہتے ہیں نا، ایک مشکل لفظ بولنے والی ہوں، ذرا سے کیئرفل ہو جائیں، جب آپ انشاءاللہ کہتے ہیں نا تو آپ کیا کرتے ہیں، تفویض الامر الی اللہ، اپنے کام کو اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں۔ یہ لفظ کہیں پڑھا ہے تفویض، سورۃ یوسف، افوض امری الی اللہ، یعنی انشاءاللہ کہہ کے میں اپنا کام اللہ کے سپرد کرتی ہوں کہ بھائی اللہ کرے گا میرے ان کاموں کا سباب بھی بنا دے گا اور سب کچھ۔ اور وہ علامہ اقبال نے بڑا پیارا معاملہ کہا کہ سپردم بتو مایا خویش را، تو دانی حساب کم و بیش را، کہتے ہیں اللہ میں جو کر سکتا تھا نیکیاں کر رہا ہوں، اب میں اپنا حساب تیرے ذمہ کر رہا ہوں، تھوڑا کیا زیادہ کیا تو جان، جیسے ہم کہتے ہیں آنا پائی تو جان، میں نے موٹا موٹا حساب رکھ دیا۔ ولبی صفی کافی ان سلاس میت ان سنین ابزداد اتسا، اور رہے اپنی غار میں 300 برس اور اس کے اوپر 9، شمسی اور قمری کا فرق تو بتا دیا، بس ویسے بھی کہتے ہیں کچھ یہ کہتے ہیں وہ کہتے ہیں، لیکن ہم نے ابھی پڑھا کہ ہمیں گنتی سے کچھ زیادہ سروکار نہیں ہے۔ قل اللہ اعلم بما لبثوا، آپ کہیے کہ اللہ بہتر جانتا ہے اس میں جتنا عرصہ وہ رہے، بحثوں میں مت پڑھیے، مقصد دیکھیے، لہو غیب السماوات والارض، اسی کے لیے آسمان و زمین کے غیب، ابصر بھی واسمع، کیا ہی خوب سننے اور خوب دیکھنے والا ہے، ما لہم من دونہ من ولی، نہیں ہے کوئی اس کے سوا کوئی ولی، ولا یشرک فی حکمہ احدا، اور کوئی شریک نہیں کرتا اپنے حکم میں کسی کو بھی۔ یہ آپ دیکھیے کہ اللہ کے لیے سات لفظ جو ولی کا آیا ہے نا، کہ ان کا ساتھی، کارساز، مددگار، حمایتی، پشت پناہ کوئی نہیں، یہ سارے لفظ ولی میں آتے ہیں۔ خلاصہ کیا نکلا، جس اللہ کی توحید کے لیے انہوں نے اتنی بڑی قربانی دی تھی، اللہ نے ان کے لیے خیر اور عافیت کا معاملہ کر دیا۔ سورۃ یوسف میں بھی یہ بات آئی، ان الحکم الا للہ، آیت 40 میں بھی اور 67 میں، نہیں ہے حکم مگر اللہ کا۔ سورۃ بنی اسرائیل میں آخر میں ہم پڑھ چکے، ولم یک اللہ شریکم فی الملکی، کہ اللہ کی چاہت میں کوئی شریک نہیں۔ یہاں پہ اصحاب کہف کا قصہ پورا ہوا، آپ کے میرے لیے عمل کی بہت ساری باتوں کے ساتھ۔ توحید پہ کھڑے ہو جائیے، حق کو پہچانیں تو اس کا اظہار بھی کیجیے، اظہار کریں تو پھر مشکل وقت میں ادھر کھڑے ہی رہیں، آپ دیکھیں گے کہ اللہ کی رحمت ہوگی اور اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ضرور مدد کرے گا۔
وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَابْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا إِنَّهُمْ إِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ وَلَنْ تُفْلِحُوا إِذًا أَبَدًا وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 قل الله أعلم بما لبثوا له غيب السماوات والأرض أبصر به وأسمع ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا.